समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियां होंगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूं दिव्या तोमर आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. India achieves historic 105 medal mark with women kabaddi win in the Asian Games.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी। वे मंगलवार को खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे।
52nd GST Council meeting underway in New Delhi.
गृहमंत्री उत्तराखंड के टिहरी जिले में आज केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
Israel declares state of war alert following a Hamas attack.
ICC क्रिकेट विश्व कप में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी।
And now Divya, it's time for a segment Dateline India. Today we will talk about.
जी हाँ अभिषेक, आज हम बात करेंगे प्रोफेसर स्वामीनाथन के बारे में, MS स्वामीनाथन, जो कि एक सच्चे किसान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और हरित क्रांति का जनक के नाम से हम उनको जानते हैं।
यस, एंड डॉक्टर स्वामीनाथन वॉज अ मेन आर्किटेक्ट और द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ही बिगैन हिज करियर बाय ज्वाइनिंग द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इन न्यू दिल्ली एंड इवेंचुअली प्लेड अ लीड रोल इन इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। His stated vision was to rid the world of hunger and poverty, and he devoted his life to ensuring that India had adequate food. So let's talk about his education. He completed his education in agriculture and earned a PhD in genetics and plant breeding. He is the recipient of numerous awards and honors, including the World Food Prize in 1987 and the Padma Bhushan, India's second highest civilian award, in 1989. And Prime Minister Narendra Modi today remembered the contributions made by the renowned agricultural scientist Professor M.S. Swaminathan, saying that his pioneering work in agriculture turned India from a food-deficient country into a self-sufficient nation. In his blog written in narendramodi.in, the Prime Minister said the nation has lost a visionary whose contribution would always be etched in golden letters. Mr. Modi said India was grappling with the ominous shadows of famine in the early 1960s, and then Professor Swaminathan's commitment and foresight ushered in a new era of agricultural prosperity. He said this tremendous achievement earned Professor Swaminathan the well-deserved title of Father of the Indian Green Revolution. And the Prime Minister highlighted that 5 decades after the Green Revolution began, Indian agriculture has become far more modern and progressive, but the foundations laid by Professor Swaminathan can never be forgotten.
बिल्कुल अभिषेक, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने 28 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत की हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने वाले स्वामीनाथन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है। पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह देश उनके योगदान को नहीं भुला सकता है। पीएम ने उन्हें किसानों का वैज्ञानिक बताया और कहा कि उनके योगदान की वजह से भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन पाया। पीएम मोदी ने लिखा है कि देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अभिषेक, आपको बता दें कि MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त को 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु भारत में हुआ था, और जो कि महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफी प्रभावित थे। शुरुआत में उनका इरादा यह था कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने जब 1942-43 में बंगाल में अकाल पड़ा उसके बाद उनका मन बदल गया और वो इतने ज्यादा इस घटना से, इस अकाल से इतने ज्यादा त्रस्त हुए, इतना ज्यादा उन्होंने सोचा कि उन्होंने इसके लिए कृषि उद्योग को बढ़ाने की इच्छा जागृत की अपनी, और उन्होंने अधिक उपज वाले गेहूं और चावल तथा अधिक उपज वाली गेहूं चावल की किस्में तथा विशेष रूप से सेमी ड्वार्फ गेहूं की किस्मों को विकसित करने में अभूतपूर्व कार्य किया और 1960 से 70 के दशक में उन्होंने कृषि में भारत में क्रांति ला दी।
Yes, M.S. Swaminathan was named the first World Food Prize laureate for developing and spearheading the introduction of high-yielding wheat and rice varieties into India during the 1960s when the country faced the prospect of widespread famine. And M.S. Swaminathan, also known as the father of the Green Revolution that increased agricultural production worldwide, particularly in the developing world beginning in the late 1960s. And let's talk a bit more about M.S. Swaminathan as written by the Honorable P.M. Academically brilliant, he could have chosen any career, but he was so impacted by the 1943 Bengal famine that he was clear that if there was one thing he would do, it would be to study agriculture. At a relatively young age, he came in contact with Dr. Norman Borlaug and followed his work in great detail. In 1950s, he was offered a faculty position in the US, but he rejected it because he wanted to work in India and for India.
यही नहीं अभिषेक, एम एस स्वामीनाथन ने कृषक वर्गों के कल्याण के लिए भी बहुत अहम योगदान दिया। स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण के लिए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे हम जानते हैं, इस रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक है और इसके अनुसार एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश पर ही किया गया। और आप श्रोताओं को बता दें कि एमएसपी वो कीमत होती है जिस पर सरकार सीधे किसानों से फसल खरीदती है।
Yes, and let's also talk about what the PM wrote. The PM said that the Kural describes farmers as the pin that holds the world together because it is the farmers who sustain everyone. And Professor Swaminathan understood this principle very well. A lot of people called him a Krishi Vaigyanik, an agricultural scientist, but I have always believed that he was even more. He was a true Kisan Vaigyanik, a farmer scientist, and in his heart there was a farmer. So this is how the Honorable Prime Minister describes M.S. Swaminathan Divya.
जी अभिषेक, इसके अलावा और भी कई योगदान रहे हैं स्वामीनाथन जी के। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल और समुद्र तल से नीचे धान की पारंपरिक खेती वाले केरल के कुट्टनाड को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा कृषि में सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 1988 में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना इन्होंने की।
Yes, so that was our discussion on the topic M.S. Swaminathan, and the nation is indeed indebted to M.S. Swaminathan for his contributions in eliminating hunger and working for his contributions towards the Green Revolution. And the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Parshutam Rupal, and Union Minister of State, Dr. L. Murugan, began the ninth phase of Sagar Parikrama at Thondi Fishing Harbour in Ramanathapuram district this morning. Speaking at the event, Mr. Rupala said that Tamil Nadu is one of the leading states in the fishing industry. The minister explained that various schemes implemented for the benefit of fishermen. He said that the Kisan credit card will be distributed to the fishermen who have applied for it. They jointly inaugurated the Manal Melkuri Fish Farmer Producer Cooperative Society branch in the Thanjavur district. And speaking to media, Dr. Murugan said that the Sagar Parikrama plan began 6 months back in Gujarat and travelled through all the coastal districts of the peninsula region. He said that visiting the coastal areas was an opportunity to interact with fishermen who are the beneficiaries of the schemes implemented by the Narendra Modi government.
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मशरूम की एक दुर्लभ किस्म का पता चला है। ये खोज किश्तवाड़ राजकीय डिग्री कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर फैसल मुश्ताक किचलू ने की। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है और एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान शोध पत्रिका ने इसे प्रकाशित किया है। भारतीय वायुसेना कल 8 अक्टूबर को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। प्रयागराज में वायुसेना ने कल एक फुल ड्रेस रिहर्सल की। परेड केंद्रीय वायु कमान मुख्यालय बमरौली में आयोजित की गई और संगम क्षेत्र में आयुध डिपो किले के आसपास एयर शो का आयोजन किया गया। और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष समाचार हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना सच हो रहा है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 4,000 से अधिक पदों को भरने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। ये कवायद पिछले एक साल से जारी है। पिछले वर्ष ग्रुप सी के 565 पदों को भरने के लिए नवंबर में सामान्य लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस वर्ष जुलाई में मैट्रिक स्तरीय पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई गई। कई अन्य विभागों में भी भर्ती का ये सिलसिला जारी है। इसके जरिए हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। एसएससी और एनआईसी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। भर्ती में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार ओएमआर शीट का उपयोग किया गया। इन परीक्षाओं में 50,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए।
26 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुए रोजगार मेले में 876 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने कहा कि प्रशासन ने पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एक वर्ष के भीतर चयन प्रक्रिया को पूरा कर युवाओं को नौकरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि अगले 4 से 5 महीनों में इससे भी 3 से 4 गुना अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अंडमान निकोबार में पिछले कुछ वर्षों से भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन अब यह बाधा दूर हो गई है। भर्ती खुलने से युवाओं के चेहरे पे मुस्कान लौट आई है, तो वहीं इससे विभागों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। गौरतलब है कि उद्योगों के अभाव में सरकारी नौकरी स्थानीय लोगों के जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत है। बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़कर मुख्य भूमि जाना ही नहीं चाहते, वे यहीं रहकर नौकरी करना चाहते हैं। रोजगार मेले में ऐसे कई युवाओं के सपने पूरे हुए। ऐसी ही एक स्थानीय युवा अर्शिया ने अंडमान में सरकारी नौकरी मिलने पर अपनी खुशी कुछ यूं बयां की।
मेरा नाम अर्शिया है और मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया गया है इंडस्ट्री में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली इतने टाइम बाद जितने सारे पोस्ट पेंडिंग थे वो सारे को अभी फिल किया गया है। हमारे एलजी सर और सभी ने जो भी इनिशिएटिव लिया था, फाइनली इट्स कमिंग ट्रू। एंड थैंक यू सो मच एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी वेकेंट पोस्ट थे सभी उनने फिल किए हैं। एक अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अंडमान में रहने से पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बहुत कमी है। देयर इज नो प्राइवेटाइजेशन इन अंडमान। तो अंडमान में गवर्नमेंट जॉब्स का निकलना ही हम हमेशा वेट करते रहते कि कब ये पोस्ट निकले।
राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर चयनित हुए तरुण पांडे ने कहा कि मोदी सरकार में उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना सच हुआ है।
मैं तरुण पांडे हूँ। मेरे को यहाँ पर पटवारी का पोस्ट मिला है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। काफी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि मोदी जी के होते हुए ये पोस्टिंग काफी सही टाइम पे और काफी अच्छे तरीके से हो गया। और यहाँ पर मिनिस्टर जी भी आए थे और उनके हाथों और एलजी सर के हाथों से ये हमें पोस्ट मिला है, तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी ये नई शुरुआत होगी हमारे लिए, काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरी मतलब काफी ज्यादा मतलब वैल्यू है। और अभी तक तो बाहर पे ही नौकरी ढूंढ रहे थे लोग, और अब लोगों को लगता है कि अंडमान में भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद उनको भी लगेगा कि यहाँ पर रहना ज्यादा फायदेमंद है। हमें लाइक यहाँ पे ग्राम में भी काम करने मिलेगा, और यहाँ पर जो लोग हैं जो इनकी पीड़ा है वो सब सुनने को मिलेगा, और उनके लिए काम करना मेरे लिए काफी अच्छा लेसन होगा।
आने वाले समय में और भी युवाओं को नौकरी मिलेगी और वे द्वीप समूह तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।
Kerala's Responsible Tourism Mission has bagged the Gold Award of the International Centre for Responsible Tourism, ICRT, in the Best for Local Sourcing, Craft and Food category.
The award comes as a major boost to Kerala tourism sector's sustainable and women-inclusive initiatives. By securing this prestigious award, Kerala's Responsible Tourism Mission qualifies to participate in the Global Responsible Award to be decided in London in November. While choosing this mission for the honor, a wide range of activities it successfully carried out have been taken into account. These included an agri-tourism network, an ethnic cuisine project that serves regional food and dishes to tourists, experimental tour packages that provide an opportunity for tourists to experience local cuisine, promotion of local art forms, culture, artisans and festivals. Meanwhile, Kerala marked a record growth in domestic tourist arrivals in first half of 2023. Domestic tourist arrivals grew by 20.1% in the first half of 2023, creating a new record. The state also recorded a surge in the number of domestic tourist arrivals compared to the pre-COVID period. Mayusha, for Parikrama from Thiruvananthapuram.
चीन के हांगझो में चल रही एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पंजाब के खिलाड़ियों ने भी इन खेलों में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए। पंजाब से संबंधित एथलीट हरमिलन बैंस ने दो रजत पदक जीतकर न केवल इतिहास रचा बल्कि परिवार की परम्परा को भी आगे बढ़ाया है। अधिक जानकारी के लिए
पंजाब के होशियारपुर जिले के माहिलपुर कस्बे की निवासी भारतीय एथलीट हरमिलन बैंस ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर हरमिलन ने 21 साल बाद उस इतिहास को दोहराया है जो कि उनकी माता माधुरी ए सिंह ने सन 2002 में कोरिया के बुसान में हुई एशियाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा था। बताया जाता है कि जब माधुरी ए सिंह पदक हासिल कर स्वदेश लौटी तो उनका अभूतपूर्व व भव्य स्वागत हुआ। उस समय नन्ही बच्ची के रूप में हरमिलन अपनी माता के इस स्वागत को गौर से निहारती रहीं और पदक हाथ में लेकर उसे चूमती रहीं। शायद उन पलों को हरमिलन ने अपना लक्ष्य मान लिया था और आज ये इतिहास बनकर सबके सामने है। अपनी इस दोहरी सफलता से हरमिलन ने न केवल अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है बल्कि उसके कदम अपनी माता व पिता के नक्शे कदम से ही आगे निकल चुके हैं। उनके पिता अमनदीप सिंह भी देश के नामी एथलीट रहे हैं और दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने के अलावा विभिन्न स्पर्धाओं में देश के लिए कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। इन खेलों में दो रजत पदकों के साथ नया इतिहास रचने वाली हरमिलन की नज़र अब ओलंपिक खेलों पर है। परिक्रमा के लिए जालंधर से मैं शिशु शर्मा शांतल।
और श्रोताओं, अब एशियाई खेलों की अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार।
चीन में हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत के कुल पदक 105 हो गए हैं। आज भारत ने अब तक 6 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत को स्वर्ण पदक मिल गया है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वर्षा के कारण मैच में बाधा आई। मैच रोके जाने के समय अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 112 रन बना लिए थे। इसके बाद मैच का निर्णय वरीयता के आधार पर किया गया और भारत को स्वर्ण पदक मिला। पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी में भी भारत ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में सात्विक और चिराग ने कोरिया की चोई सुलग्यो और किम वोनहो की जोड़ी को 21-18, 21-16 से पराजित किया। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पुरुष डबल्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड के फाइनल में दक्षिण कोरिया की सो सी को 149-145 के अंतर से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता।
बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इंकरेज किया थ्रू आउट माई जर्नी ताकि आज मैं ये जीत सकूँ। एंड गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का ये नहीं हो पाता, तो थैंक यू सो मच।
पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। आज का पहला पदक महिला कंपाउंड तीरंदाजी के सिंगल्स में अदिति ने कांस्य के साथ जीता है। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया को रजत पदक मिला है। फाइनल में दीपक को 3 बार के विश्व चैंपियन हसद यजदानी से हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 पदक हासिल करने पर सभी एथलीट्स को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि एथलीट भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है, और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी।
भारत 28 स्वर्ण, 36 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 105 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
बुक रिव्यू। और आइए अब बात करते हैं पुस्तक समीक्षा की। कंचों की चमक एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है। इस पुस्तक में 20 कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी का अलग अलग फ्लेवर है। अपने परिवेश के कथानकों पर आधारित होने के कारण बच्चों को इन सभी कहानियों से जुड़ाव महसूस होता है। इसके लेखक हैं श्री निश्चल बाल साहित्य। उन्होंने कहानियों को सुंदर और सरल शब्दों में पिरोया है। इसमें दलियावाला स्कूल नामक कहानी ये दर्शाती है कि स्कूल कैसा भी हो, एक अच्छा शिक्षक छात्रों की पढ़ने में रुचि बढ़ाकर उनका भविष्य बदल सकता है।
कंचों की चमक एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है। इस पुस्तक में 20 कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी का एक अलग फ्लेवर है। अपने परिवेश के कथानकों पर आधारित होने के कारण बच्चों को इन सभी कहानियों से जुड़ाव महसूस होता है। लेखक श्री निश्चल बाल साहित्य का जाना माना नाम है। उन्होंने कहानियों को सुंदर और सरल शब्दों में पिरोया है। पुस्तक की कहानियां उन छोटी छोटी घटनाओं और प्रसंगों पर आधारित हैं जो हर रोज हमारे आसपास घटती हैं। आज के दौर में जब जीवन आपाधापी में बीत रहा है, कई घटनाओं को देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। कई बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि यह कोई महत्वपूर्ण घटना है। लेखक ने जीवन और समाज से उन्हीं उपेक्षित घटनाओं को उठाकर सुरुचिपूर्ण कहानी में पिरोया है। दलियावाला स्कूल नामक कहानी यह दर्शाती है कि स्कूल कैसा भी हो, एक अच्छा शिक्षक छात्रों की पढ़ने में रुचि बढ़ाकर उनका भविष्य बदल सकता है। ऐसे ही कंचों की चमक नामक कहानी में शिक्षक के प्रयास से कंचों में रुचि रखने वाला यानी पढ़ने से ज्यादा खेलने पर ध्यान देने वाला छात्र धीरे धीरे पढ़ने और कक्षा में पढ़ाई करने में रुचि लेने लगता है। शिक्षा और शिक्षक के महत्व को इस पुस्तक में बखूबी दिखाया गया है। सुंदर और आकर्षक रेखाचित्र इस पुस्तक को और भी खूबसूरत बनाते हैं। प्रत्येक कहानी के साथ उसके आकर्षक चित्र बच्चों को सहज ही अपनी ओर खींचने में सक्षम है। जब बच्चे उसे पढ़ना आरंभ करते हैं तो उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। यह बात इस संग्रह को खास बनाती है।
Now it's time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day. The day of 7th October is marked as a black day in the history of India's freedom movement because on this day in 1930, the death sentence to great freedom fighters and revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev in the Lahore conspiracy case was pronounced. A special tribunal was set up by the British imperial government to speed up the trial as the popularity of the revolutionaries in the Lahore jail was increasing day by day and stirred the national sentiment in the entire country.
Viceroy Lord Irwin declared an emergency on 1st of May 1930 and introduced an ordinance to set up a special tribunal composed of 3 High Court judges for the case. This decision cut short the normal process of justice.
On 2nd July 1930, a habeas corpus petition was filed in the High Court challenging the ordinance. The petition argued that the Viceroy had power to introduce an ordinance only under conditions of a breakdown of law and order. The petition claimed that in this case, such condition had not occurred.
However, the petition was dismissed as being premature. On 7th October 1930, the tribunal delivered its 300-page judgment and concluded that the participation of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. 7th October is also the birth anniversary of a woman freedom fighter from Tamil Nadu, S.N. Sundarambal, who was born on this day in 1913 in Tirupur. Several freedom fighters from Tirupur and Coimbatore districts fought for the nation's cause during the British era, but statues of only 2 of them have been erected in Tirupur city.
One of them is Tirupur Kumaran, also known as Kodikatha Kumaran, who is among the most celebrated freedom fighters from the region. The other is a simple and humble S.N. Sundaram Bal, who didn't step back from the front line of the movement, even when nursing a newborn. Sundaram Bal was born in Veerapandi in Tirupur. Despite being from a rich family, she was interested in social service and the freedom struggle. In 1928, Mahatma Gandhi requested the public to donate to the Congress Party to fight the British rule.
Sundaram Bal climbed the stage and offered her gold bangles to the great leader. Mahatma Gandhi told her to instead join the non-violent resistance for Indian independence. Sundaram Bal went on to participate in several protests during the freedom struggle, and during the Satyagraha protest in 1941, she was arrested along with her newborn son and jailed in the Vellore prison for 3 months. She participated in the Quit India movement and was arrested and sent to the Vellore prison again.
In 1943, Sundaram Bal organized a large-scale demonstration in Tirupur against the British government and was again arrested and jailed for 3 months. After independence, she took an active interest in ensuring farmers' welfare in the district and organized many protests for them.
7th October is also the death anniversary of freedom fighter, reformer and educationist K. Kelappan Nair, who is also known as Kerala Gandhi. He was a founding member and president of Nair Service Society. In 1930, he led the salt satyagraha and marched to Payyanur beach and made salt.
Besides, he also fought relentlessly against untouchability and caste-based discrimination. He played a crucial role in the unification of the state of Kerala. He was elected to parliament in 1952.
और अब बात करते हैं उन महान लोगों की जिनकी आज जयंती है, पुण्यतिथि है या जन्मदिन है.
Edgar Allan Poe passed away on this day in 1849. He was an American writer, poet, author, editor and literary critic who is best known for his poetry and short stories, particularly his tales of mystery and the macabre. And also Simon Philip Cowell was born on this day in 1959. He is an English entrepreneur, television personality and record executive. He is a founder and the sole owner of the British entertainment company Syco and is the creator of the X Factor and Got Talent television franchises.
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने सिखों के सैनिक संगठन खालसा का सृजन 1699 में बैसाखी के दिन किया. उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया. गुरु गोविंद सिंह की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए.
जॉन जे मेलनकैम वाज बोर्न ऑन दिस डे 1951. He is an American singer-songwriter. He is known for his catchy brand of heartland rock, which emphasizes traditional instrumentation. Let's listen into his hit song, Jack and Diane, and it's from the album, American Fool.
A little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jack is gonna be a football star.
और भारत की प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर की आज जयंती है. बेगम अख्तर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1968 में पद्मश्री और सन 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. बेगम अख्तर को मल्लिकाए गजल भी कहा जाता है. आइए सुनते हैं उनकी एक ठुमरी.
And Thomas Edward York was born on this day in 1968. He is an English musician who is the main vocalist and songwriter of the rock band Radiohead. Let's listen into his hit song Lotus Flower, and it's from the album The King of Limbs.
भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार वाजिद अली खान की आज जयंती है. वाजिद अली खान को अगर हम याद करें तो साजिद वाजिद की जोड़ी के तौर पर जानते हैं. आइए सुनते हैं उनके द्वारा संगीत दिया गया है.
पहला पहला इश्क हुआ है पहला तजुर्बा पहली दफा है।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।